हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगली सुबह करीब 6 बजे अनाही सुकून से सुबह की ताज़ी हवा को महसूस करते हुए सो रही थी कि अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी चुभन का एहसास हुआ। उसने डरते हुए झट से आंखें खोल लीं तो देखा एक छोटी सी सफ़ेद कलर की बिल्ली उसके गाल पर पंजा रखे उसे गर्दन टेढ़ी किए देख रही है। ये देखकर अनाही ने डरते हुए उस बिल्ली को खुद से दूर झटक दिया, जिसके साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। शायद अनाही के इतनी तेज़ी से झटकने की वजह से उस बिल्ली को चोट आ गई थी, जिससे वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगी थी। उस बिल्ली ने अपने दोनों पंजों को अपने चेहरे पर लाते हुए अपनी चिल्लाहट को और तेज़ कर लिया, जिसे देखकर अनाही ने घबराते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर अपने मन में कहा, इतनी सुबह सुबह ये बिल्ली कहाँ से आ गई? क्या आसपास कोई चिड़ियाघर है? उसने इतना ही कहा था कि वहाँ लगभग दौड़ते हुए रोहान आया। वो शायद सीधा जिम एरिया से निकलकर आया था। उसकी अपर बॉडी बेयर्ड थी और नीचे उसने एक ट्राउज़र पहन रखा था। उसके 8-पैक एब्स बिल्कुल क्लीन थे और उनसे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसके हल्के कर्ली बाल भी पसीने से भीगकर उसके फोरहेड पर हल्के से चिपके हुए थे। उसे वहां इस हाल में देखकर अनाही ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन फिर जैसे ही उसे बिल्ली की आवाज़ आई उसने झट से रोहान को देखते हुए कहा, रोहान जी, ये बिल्ली कहाँ से आ गई है सुबह सुबह? रोहान ने गुस्से में अपने जबड़े कस लिए और अगले ही पल घुटनों के बल बैठते हुए उस बिल्ली की तरफ अपनी दोनों बाहें फैला दीं, जिसके साथ ही वो सफ़ेद बिल्ली दौड़ती हुई आई और रोहान के सीने पर बिल्कुल ऐसे चिपक गई जैसे कोई बिल्ली अपनी माँ के सीने पर चिपकती है। रोहान ने उसके सफ़ेद मुलायम बालों पर हाथ घुमाते हुए गुस्से से अनाही को घूरा और फिर गुर्राते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शुगर को परेशान करने की? वहीं वो बिल्ली जल्दी से अपने पंजे को रोहान के चेहरे पर लगाती है, जिसके साथ ही रोहान उसका पंजा अपने हाथ में लेते हुए कहता है, यहाँ चोट लगी है बेबी तुम्हें? वो बिल्ली इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है जैसे अभी अपना गला फाड़ लेगी, जिसके साथ ही रोहान उसको लेकर उठ जाता है और फिर तेज़ी से बालकनी से जाते हुए बोलता है, मैंने बहुत बार कहा है मैडम जी, मेरी चीज़ों से दूर रहा करो और ख़ासकर मेरी शुगर से, वरना मैं आपका इस कमरे में आना भी बंद करवा दूंगा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। अनाही मुंह फाड़े बस रोहान को देख रही थी। उसके इस बर्ताव की उम्मीद अनाही ने बिल्कुल नहीं की थी। रोहान जिस तरह अकड़ू बिहेव करता था, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसे बिल्ली जैसा मासूम जानवर पसंद होगा। वहीं रोहान उस बिल्ली को लेकर वापस उस कमरे से अटैच्ड दूसरे कमरे में जा चुका था। उसने बिल्ली को जल्दी से नहलाया और फिर उसे एक छोटे से लकड़ी के बने घर में छोड़ते हुए बोला, शुगर बेबी, अब मैं शायद सीधा रात को आऊँगा, ठीक है? इतना बोलकर उसने हल्के से उस बिल्ली के फोरहेड पर किस किया और फिर तेज़ी से निकलकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जैसे ही उसके शरीर पर ठंडा पानी पड़ा, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इसके साथ ही उसकी आंखों के सामने सिर्फ अनाही का चेहरा घूम गया और अचानक ही उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़का जैसे अभी सीने से उछलकर बाहर आ जाएगा। उसने अपने चेहरे पर बहते पानी को पोंछते हुए धीरे से बड़बड़ाकर कहा, मैडम जी तो बहुत सुंदर हैं, मुझे तो लगा था वो अपनी तारीफ में कुछ नहीं बोल रही हैं तो शायद बहुत ज़्यादा गंदी दिखती होंगी, पर उनका वो बेदाग चेहरा। कुछ सोचकर रोहान ने अपने आगे के शब्द अपने मुंह में ही रख लिए और फिर जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आया। उसकी नज़र एक उम्मीद के साथ सीधा बालकनी की तरफ गई थी, लेकिन वहां अब अनाही मौजूद नहीं थी। ये देखकर कहीं ना कहीं रोहान के चेहरे पर उदासी आ गई थी, क्योंकि अपनी शुगर के चक्कर में उसने अनाही को एक बार फिर ढंग से नहीं देखा था। उसने बस उसकी झुकी हुई पलकें और गुलाबी होंठों को देखा था, जो उसके चेहरे के सबसे यूनिक फीचर्स थे। वही अनाही इस वक्त निवेदिता के कमरे में मौजूद थी। निवेदिता खुद उसे रोहान के कमरे से बुलाकर लेकर गई थी। अनाही वहां सर झुकाए खड़ी थी तो निवेदिता ने अपने हाथ में पड़ी दोनों साड़ियों को बेड पर रखते हुए अनाही का हाथ पकड़ा और फिर उसे बेड पर बैठाते हुए उसका हालचाल कर सलाह कर पूछा, कैसा था आपका पहला अनुभव हमारे छोटे से शैतान के साथ? वैसे तो वो दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे पता है पहली बार में वो सबके साथ काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आता है। अनाही ने एक पल के लिए रोहान की उन अजीब सी हरकतों को याद किया और उसके होंठों पर स्माइल आ गई। फिर उसने निवेदिता को देखते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की है और मुझे नहीं लगता आगे भी कभी वो मेरे साथ बदतमीज़ी करेंगे। अनाही को अब तक एक बार भी याद नहीं आ रहा था जब चौहान ने उसको तू या तुम कहकर बुलाया हो, वो उसे कितनी इज्जत से बुलाता था। हाँ, वो अलग बात थी कि उसे इज्जत के साथ उसके बाकी शब्द कतई सहल करने वाले नहीं होते हैं, पर फिर भी अनाही को अपने दिल में एक तसल्ली थी कि बंदा जेंटलमैन है। निवेदिता नाम उन साड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनमें से एक साड़ी तुम विहां को दे देना, थोड़ी देर बाद तुम लोगों की मुंह दिखाई की रस्म होगी, ज्यादा तो नहीं, बस तीन चार पड़ोसन है मेरी जिनको मैं बुलाऊंगी अपनी खूबसूरत बहू को देखने के लिए। ये सुनकर अनाही ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी मैं ये साड़ियाँ ले जाती हूँ। निवेदिता ने हाँ में सर हिलाया और अनाही वहाँ से निकलकर वापस अपने कमरे की तरफ आ गई। निवेदिता, रोहान और वेदांत का कमरा थर्ड फ्लोर पर था, बाकी सेकंड फ्लोर जिग्नेश की फैमिली का था, तो वहीं ग्राउंड फ्लोर रितेश की फैमिली का। अनाही ने सोचा पहले वो विहा को भी दोनों साड़ी दिखा देती है ताकि वो बाद में ये ना बोले कि मेरी वाली अच्छी नहीं है, इसलिए उसने सबसे पहले वेदांत का कमरा नॉक किया। वेदांत जो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, उसने अपनी वॉच पहनते हुए दरवाज़ा खोला और सामने अनाही को इतनी सुबह देखकर उसने आंखें छोटी करके कहा, कुछ चाहिए था तुम्हें? अनाही ने धीरे से कहा, वो मुझे विवाह से मिलना था, मम्मी जी ने दो साड़ियाँ दी हैं, उसे दिखा दूँ उसे कौन सी वाली पहननी है। वेदांत कमरे के दरवाजे से हट गया और अनाही भी धीमे कदमों से चलकर कमरे के अंदर आ गई, लेकिन कमरे के अंदर आते ही उसकी नज़र जैसे ही विहा पर गई उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि विहा बेसुध सी सोफे पर लेटी थी। उसका एक हाथ नीचे लटक रहा था तो वहीं एक पैर सोफे की आर्म रेस्ट पर और एक पैर नीचे फर्श पर टिका हुआ था। उसका सूट भी खींचकर थोड़ा सा ऊपर खिसक गया था, दुपट्टा दो पहले से फर्श पर गिरा हुआ था। अनाही तेज कदमों से विहा के पास गई और सबसे पहले उसके हाथ पांव को सोफे पर एडजस्ट करते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, विहा बच्चा उठो, सुबह हो गई है, ये हमारा घर नहीं है, ससुराल है, इतनी देर नहीं सो सकते हैं। विहा ने एक करवट बदली और फिर बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए अनाही का हाथ पकड़कर अपने सर के नीचे देते हुए बोली, दी आप सुबह सुबह क्यों तंग कर रही हो मुझे, मम्मा से बोलो मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। अनाही नाम एक हाथ से अपना सर पकड़ते हुए कहा कि लड़की, फिर उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसके सर पर फिर से प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, विहा उठो, तुम्हें मम्मी नहीं बुला रही है, पर आज शादी की बाकी रस्में करनी है, प्लीज उठ जाओ। कहीं ना कहीं विहा के लिए अनाही को बुरा लग रहा था। अनाही ने सोचा ही नहीं था जैसा बिहेवियर रोहान ने उसके साथ किया है ठीक वैसा ही वेदांत ने भी किया होगा। ये तो अच्छी बात है, वेदांत ने उसे बालकनी में नहीं भेजा, कमरे के अंदर ही रहने दिया, वरना विहा को ठंड से इतनी ज्यादा एलर्जी है, बारिश के कॉन्टैक्ट में आते ही उसे छींके आना शुरू हो जाती हैं।
विहा ने करवट जाते हुए आंखें खोलकर कहा, दी आप इस तरीके से क्यों बातें कर रही हैं? और जैसे ही उसकी आंख खुली और उसकी नज़र वेदांत से मिली, वो झट से उठकर बैठ गई और फिर अपना सर दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे एक खड़ूस धोखेबाज पति मिल गया है।